الحمد للہ. اللہ تعالیٰ کا کلام ہم سب کے سامنے ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو کیسے لیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کو بہترین طریقے پر لینے والا بنائے. اگلا پارہ شروع کرنے سے پہلے چند باتیں پچھلے پارے سے متعلق. چوتھا پارہ شروع ہوا تھا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ جب تک تم اپنی من پسند چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ دے دو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. اصل میں امت وسط کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا کام دیا تھا, اور وہ دنیا کی ہدایت کا پیامبر بننا. کل کے دور میں جو کام انبیاء کرام سے لیا گیا وہی کام اس دور میں امت مسلمہ سے لیا گیا. یہ پورے کا پورا پارہ اسی تھیم پہ تھا. اگر گھر جانے کے بعد آپ نے اپنے کندھوں پہ ایک ذمہ داری کا بوجھ محسوس کیا, جواب دہی کے احساس نے کل آپ کو کھانے میں وہ لذت نہ دی جو کہ پہلے ہوتی تھی, اور بے فکری اور لاوبالی پن کی کیفیت ختم ہو کر اب ایک دھن سوار نہ ہو گئی کہ میں نے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس پارے میں سے پورا اخذ نہیں کیا. اور پھر پورے پارے میں وہ ساری رکاوٹیں تھیں جو امت مسلمہ کو آج درپیش ہے, جس میں سب سے بڑی رکاوٹ فرقہ واریت اور ہمارا آپس کا اتحاد نہ ہونا, اور مسلم ہڈ جس کو بردر ہڈ کہیں گے اس کا فقدان ہے. ہم فرد بن کے تو سوچتے ہیں اور فرد بننے کے ناطے ہم کامیاب بھی ہیں, لیکن اجتماعی طور پہ سوچنا, ملک اور ملت کو اوپر کر کے ایک امت کے احساس کے ساتھ جینا, یہ سب کچھ تھا. پھر اس بارے میں ہم نے بار بار توکل کی بات سیکھی, صبر کی بات سیکھی اور تقویٰ کی بات سیکھی. جب تک ہم اپنے ذاتی زندگی کے معاملات اللہ کے حوالے نہیں کرتے تب تک ہم اس کام کی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے. ہمارے بہت ساری چیزوں میں پیچھے رہنے کی بڑی وجہ ہمارے ذاتی کام ہوتے ہیں, تو ذاتی کاموں کو بھی اللہ کے حوالے کریں گے تو پھر ہی بات بنے گی. پھر اس میں ہم نے رشتوں کو جوڑنے کے اندر جو بات دیکھی تھی وہ صرف انسانی نسبی سحری رشتے نہیں تھے, بلکہ ایک امت ہونے کے ناطے پورے گلوب کے اوپر مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ ہو ہمیں اس میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اور ان سب کاموں کو کرنے کے لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک آپشنل کام نہیں ہے, اختیاری کام نہیں ہے کہ دل چاہے تو کر لو دل چاہے تو نہ کرو. یعنی یہ نفل عبادت نہیں ہے, سنت بھی نہیں ہے, یہ فرض درجے کی عبادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کو دین کا ایک رکن ثابت کیا گیا کہ اس کے بغیر دین پورا نہیں ہوتا. اور سورۃ الاسر کو لے لیجئے, تو وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر, اس کے بغیر کسی کی کامیابی کی امید نہیں. پھر اس میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے ناطے एक लीडर को और एक दाई दीन को जिन खूबियों से मुत्तसिफ होते हुए होना चाहिए, यदि जो किन खूबियों का हामिल हो, फ़बिमा रहमत मिनल्लाह लिन तलहम की बात देखी कि एक दाई दीन नरम मिजाज भी होता है और अगर सख्त मिजाज और सख्त ज़ुबान होगा तो सारे लोग इर्द गिर्द के जो हैं बिखर जाते हैं। सूरत आले इमरान के आखिरी रुकू में हमने देखा था कि गौर व फ़िक्र करना भी इबादत है और एक घड़ी का गौर व फ़िक्र कई घंटों की इबादत से बेहतर है और इसी से खशियत पैदा होती है और खशियत ही का फ़ुकदान है आज। इबादात बहुत सारी हैं, कोशिशें भी हैं, लेकिन खशियत नहीं है जिसकी वजह से हमारे मामलात दुरुस्त नहीं होते। फिर हमने इसमें गुस्से की बातें भी सीखी थी कि बात बात पे जिस कौम को गुस्सा आने लगे, जिस घर पे सिर्फ आटे में नमक या खाने में मिर्च ज़्यादा होने पे मर्द गुस्सा करेगा तो वो फिर बाहर जाकर क्या सबूत देगा। और फमन ज़ुख़्ज़िहानिन नार वउद्खिल अल-जन्न फ़क़द फ़ाज़, जो कोई जहन्नुम की आग से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया गया असल में वही कामयाब है। तो गोया कि क्या पता चला हमें इन सारी बातों से कि कामयाबी चंद चीज़ों के मजमूए का नाम है, एकदम कुछ नहीं होता। ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें अपना पूरा खौफ दे दे, पूरी खशियत दे दे। ये तो था पिछला पारा। आज का पारा, पारा नंबर 5, वल मुहसनात, और निकाह वाली औरतें। मुहसना लफ्ज़ से ये पारा है। पिछले पारे की आखिरी आयत थी हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम से बात शुरू हुई और अल्लाह ताला ने उसमें एक लिस्ट दे दी थी मुहर्रम रिश्तों की, वो औरतें जिनसे निकाह नहीं हो सकता। और ये भी बात हुई थी कि करीब रहने वाली औरतें जिसमें माँ बहन बेटी और इसी तरह फूफी खाला, इनके साथ निकाह हराम क्यों किया गया, ताकि लोगों की तवज्जो काम पर रहे। याद रखिए कि बहुत अरसा शहवानी माहौल में रहने की वजह से कर्म करने की कारकर्दगी कम हो जाती है और इंसान अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड फील करता है। आप ज़रा सा सोचिए कि अगर घर में भाई बहन मौजूद हैं इस वक्त तो क्या आप इधर मुतमईन होकर बैठ सकती थी। तो लिहाजा बाप बेटी के रिश्ते का तकद्दुस और भाई बहन के रिश्ते के तकद्दुस के लिए अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को पाबंदी में लगा दिया। आज का पारा बहुत ही अहम पारों में से एक पारा है। आप कह लीजिए कि कल के पारे में अगर उम्मत मुस्लिमा के मसाइल, उनको दरपेश प्रॉब्लम्स और उसका हल था, तो इस पारे का मौजू लिख लीजिए उम्मत मुस्लिमा के लिए सालेह माशरे की बुनियादें और इसका तज़किया और तत्हीर। मुश्किल लफ्ज़ बोल दिया मैंने, यानी उम्मत मुस्लिमा जहाँ भी रहे वो माशरा सालेह हो, नेकियों का रिवाज आम हो, उसकी क्या बुनियादें हैं और किसी भी माशरे में रहने वालों का तज़किया कैसे हो, और तत्हीर यानी मुख्तलिफ़ बुराइयों से किसी माशरे को कैसे पाक किया जाए। इस बारे में से हम अपने इस साल के थीम रिश्तों को जोड़िए, इसमें से जिस रिश्ते पे बात करेंगे है तो बहुत ही नागवार और अब नागवार नहीं रहा, ग़ुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। वक्त और हालात के साथ हमने दीन को पीछे तो किया सो किया, लेकिन हम तो अपनी रिवायात के भी पाबंद न रहे। तो आज जो रिश्ता ज़ेर बहस रहेगा आयात की रोशनी में, वो है छुपी दोस्ती का रिश्ता। इसको लिविंग टुगेदर कह लीजिए, बॉय गर्ल फ्रेंडशिप कह लीजिए, इसको आज के दौर में हिडन फ्रेंडशिप की बजाय ओपन फ्रेंडशिप कर दीजिए, क्योंकि कुछ मन चले कहते हैं हम कौन सा छुप के दोस्तियाँ करते हैं। और ख़ास तौर पे इसकी रोशनी में एक रिश्ता जिसको मंगेतर कहते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स माजरत के साथ ये सोच लेते हैं कि जिस लड़की के साथ जिस लड़के की मंगनी हो गई, हाँ हो गई, बात पक्की हो गई, बस गोया कि अब ये तो कल का शौहर है। हालांकि आप ख़ुद देख रहे हैं कि जिस तेज़ी से तलाक़ें हो रही हैं इसी तेज़ी से मंगनियाँ भी टूट रही हैं। और जहाँ भी मादा परस्ती होगी ऐसे ही होगा, क्योंकि लोग ऐसे हालात में ऐसी चीज़ों को लेकर किधर जाएंगे ये आप और मैं सब जानते हैं। तो जब मंगनी जिससे की है उसके साथ लड़की लड़का इकट्ठे बैठें, अंगूठी पहनाएं, वो खाने खाने जाएं, हो तो ये रहा है कि चलो अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी और बाद में परेशानियां ना आएंगी, लेकिन इसका बहुत ही बुरा असर जो निकल रहा है वो आपके मेरे ऊपर छुपा हुआ नहीं है। याद रखिए कि किसी भी माशरे में दो तरह के लोग होते हैं, एक अपने आप को बहुत ओपन माइंडेड लिबरल कहते हैं और एक बड़े कंजर्वेटिव्स होते हैं, जो बड़े कह लीजिए कि एक जिद्दत पसंद होते हैं और एक शिद्दत पसंद होते हैं। इस्लाम में इन दोनों चीज़ों के बीच की बात है। इस्लाम ना तो किसी चीज़ से रोकता है ना किसी से। इसकी क्या हदें हैं, कैसे है, इसको इंशाल्लाह अभी हम आयात शुरू करेंगे तो उसके साथ लेंगे। और इस पूरे पारे में भी हमें जो कुछ दिखना है वो आपके सामने है, किस तरीके से हमने अपने घरों के माहौल को पाकीज़ा रखना है। आज़ादाना मेल जोल नहीं चाहिए औरत और मर्द का। आग और पानी को इकट्ठा रखेंगे तो धुआं उठेगा, और आज ये धुआं उठता दिखता है। फिर हम सब को अपनी सलाहियतों को पहचानना है। हम सब का मकसद एक ही होना चाहिए कि इस दीन को ऊपर लेकर जाना है, और हमारी ज़ात से इस दीन की इज्जत हो। और इसी तरह अल्लाह ताला हमें मुश्किलात में नहीं डालता, लेकिन हमारी ख्वाहिशात की दौड़ ने हमें मुश्किलात में डाल दिया। फिर इसी तरह से ज़ाहिर परस्ती को ख़त्म करना है। आज के दौर में लोग बहुत ही ज़्यादा ज़ाहिर परस्त हो गए। अंदर की खूबियाँ दिखे ना दिखे, बाहर की खूबियाँ दिखती होती हैं। और इसी तरह से कबाइर से बचना है, दिखावे के लिए माल नहीं लगाना, इसी से बचना है। अगर दूसरों में कोई बुराई दिख जाए तो उसको फ़ौरन छुपाने की कोशिश करनी है, सब्र और तहम्मुल का काम करना है। और सबसे बड़ी बात के नबी सल्लम के तरीक़ों पर अमल करना है, हिकमत मांगनी है। याद रखिए कि एक मुसलमान की सबसे बड़ी ताकत तौहीद है। जितना आप एक अल्लाह को मानते जाएंगे, आपके अंदर खूबसूरती आती जाएगी। और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म सुनकर इताअत करनी है, अपनी अक़ल नहीं लड़ानी। और अगर हमारे इस मुल्क का नाम पाकिस्तान है तो हमने इसको इंशाल्लाह पाक करना है, बेहयाई से और गंदगी से। और वतन परस्ती की बजाय दीन परस्ती का रिवाज लेके आना है, दीन के अमली तकाज़े पूरे करने हैं। अल्लाह ताला मुझे आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। तरीक़ाकार वही होगा, हालांकि ये तवील पारा है आयात के एतबार से भी, मज़मून के एतबार से भी, लेकिन हम एक रुकू की आयात इकट्ठी पढ़ेंगे उसके टॉपिक के साथ, और फिर बाद में इंशाल्लाह उसमें से अमल के नुक्ते मुंतखब करेंगे। दुआ करके एक बार फिर अपने आप से पूछिए कि मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। बाहर की खामोशी है तो अंदर भी खामोशी है। सारी सोचें, सब बातें, तफक्कुरात, फ़िक्र को आज़ाद कीजिए अपने आप को उनसे, और अल्लाह के कलाम को अपने दिल की ज़मीन पे लेते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरत निसा आयत नंबर 24 से पाँचवा पारा शुरू होता है। हम 24 और 25 दो आयात जिस पे रुकू पूरा होता है, इसका टॉपिक लिखेंगे, निकाह की बुनियादें और इसके अरकान। अगर आपसे कोई पूछता है कि इस्लाम में निकाह की क्या शरायत हैं, क्या चीज़ें हों तो निकाह होता है, और किसकी गैर मौजूदगी निकाह को जिना में बदल देती है, तो सिर्फ़ इन दो आयात में आपको इसका पूरा खुलासा मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस्लाम की दी हुई इस रहनुमाई पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बच्चे बच्चियाँ अपनी ज़िंदगियों का आगाज़ एक पाकीज़ा बुनियाद पे करें। आइए शुरू करते हैं। वल मुहसनातु मिनन्निसा इल्ला मा मलकत अईमानुकुम। और हराम की गई और क्यों है? क्योंकि हुर्रिमत के लिए पीछे से शुरू हुई थी, एक इजाफा उसमें और आ गया। मुराद क्या है कि जिस औरत से निकाह हराम है, वो माँ बहन बेटी की तरह हर वो औरत जो शादीशुदा है। बड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। शादीशुदा औरत के बारे में किसी गैर मर्द का कुछ सोचना, उसको अपनी बीवी बनाने का ख्वाब देखना या उसके घर को बिगाड़ना, इसकी कोशिश करना, इस आयत की रोशनी में हराम है। अफसोस के साथ कहूँगी कि पहले तो अनमैरिड लोगों के अफेयर्स थे, स्कैंडल्स थे, रिश्ते थे, लेकिन आज के दौर का ये तोहफा हो गया कि शादीशुदा लोगों के अफेयर्स बाज़ दफ़ा गैर शादीशुदा से ज़्यादा हो गए। और उसकी बहुत बड़ी वजह हमारा तर्ज़ ज़िंदगी है। चूँकि आज मौजू बड़ा क्रिटिकल है, कुछ बातें चुभेंगी, चुभनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे घरों का माहौल वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए था। औरत और मर्द इस तरह से इख्तलात के साथ मिलते जुलते हैं, और फिर कहा जाता है ये तो भाई है, ये तो देवर है, ये तो जेठ है, ये तो नंदोई है, ये तो अब रिश्तेदारियां बन रही हैं, और इस लड़के ने तो अब साथ रहना है, तो इसको तो फिर मंगेतर के रूप में कबूल करना पड़ेगा। ये मेरी आपकी अक्ल के दौरे हैं। हम जितना अपनी अक्लों को इस्तेमाल करेंगे अल्लाह के हुक्म से उतना दूर जाएंगे। तो हर शादीशुदा औरत, ये भी दूसरे किसी भी मर्द के लिए हराम है। مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ نے احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تم پر حلال کی گئیں۔ یہاں سے اگر آپ ایک بریکٹ اپنے نوٹس میں لکھ لیں، جو میں نے ٹاپک آپ کے لیے چوز کیا کہ نکاح کی شرطیں، تو یہاں سے پہلی شرط ہے، یعنی اس سے پیچھے کیا تھا، جن سے نہیں ہو سکتا، وہ لسٹ پوری ہوئی۔ اس کا خلاصہ کر دیتی ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ ہے اور وہ ہے، اپنی جان کو بچانے کے لیے اللہ کے کئی احکامات کی تاویل کرتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ نے جن عورتوں کے ساتھ نکاح حرام کر دیا ہے، ان کی لسٹ میں ہر وہ عورت ہے جو محسنہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کرنے کے بعد اب کیا بتایا، ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں، مگر شرائط کیا ہے؟ پہلی بات کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح حاصل کرنا چاہو، یعنی حق مہر اس سے مراد ہے، برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کے لیے، یعنی بسانے کا ارادہ ہو، صرف جسمانی تعلق مطلوب نہ ہو۔ اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہونے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو، اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی پوری وسعت و طاقت نہ ہو، وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہوئے ہو، اپنا نکاح کر لو، تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ کیا پتہ چلا کہ نکاح کی صورت میں بھی کئی سخت شرائط ہیں۔ اگر ایک مرد ایک آزاد عورت کی شرائط پوری نہیں کر سکتا، تو کسی کی لونڈی سے جا کر نکاح کروایا جا سکتا ہے اس کے مالک کی اجازت سے۔ تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کرو۔ یہاں آپ کو نکاح کی ایک اور شرط مل رہی ہے، اور وہ ولی کا ہونا۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ ایک لونڈی اگر اپنے مالک کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، تو ایک آزاد عورت اپنے باپ کی، یا باپ نہیں ہے اگر تو بھائی کی، اور اسی طرح قریب سے قریب چلتے جائیں، تو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ یہاں بڑی توجہ سے سننے کی بات ہے، بیٹیوں کے لیے بھی اور بیٹیوں کے گھر والوں کے لیے بھی۔ ہر وہ نکاح جس کو آپ کورٹ میرج کہیں، گھر سے بھاگ کے چلی گئی، کسی مسجد کے امام صاحب کو پکڑا اور نکاح کر کرا لیا، اسلام اس کو نکاح نہیں کہتا۔ عورت ایک بڑی محفوظ چیز ہے، بیٹی بڑی قیمتی ہوتی ہے، اس کی عزت بڑی پیاری ہوتی ہے۔ ایک عورت کی عزت کو بچانے کے لیے، اس کو قیمتی بنانے کے لیے، مرد کو مکلف کیا گیا کہ اس کے گھر آئے، اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لائے جو اس بات کے گواہ ہوں، اور کسی کی بیٹی یا بہن بڑی عزت سے لے کر جاؤ، تاکہ کل وہ بیٹی جب اس گھر میں جائے تو ان کو پتہ ہو کہ ہم نے اس کو بڑی عزت سے لے کر آئے ہیں۔ اس کے برعکس وہ لڑکیاں جو گھروں سے بھاگ کر یا باپ بھائیوں سے چھپ کے کوئی نکاح کر لیتی ہیں، تو یاد رکھیے صرف 4 دن کی کہانی ہے، بعد میں وہی مرد اس کو تانا دیتے ہیں کہ جس باپ نے تجھے پالا پوسا تو اس کو چھوڑ کے میرے ساتھ آ گئی، تو کل تو کسی اور کے پاس بھی جا سکتی ہے۔ تو یہ عورت کے لیے پابندی نہیں، بلکہ عورت کے لیے آنر کی بات ہے۔ اور قاعدے کے مطابق ان کے مہر ان کو دے دو، وہ پاک دامن ہو، نہ کہ اعلانیہ بدکاریاں کرنے والیاں ہوں، یعنی شادی سے پہلے تعلقات نہیں ہونے چاہیے۔ ایک عورت جب کسی مرد کی زندگی میں آتی ہے، کورے کاغذ کی طرح ایسی صاف ستھری عورت ہو کہ ایک ایسی بنیاد پہ اس گھر کی بنیاد چلے کہ جس میں کسی دوسرے کے خیالات نہ ہوں۔ یاد رکھیے کہ آج کے دور میں یہ جو معاملے ہمارے سامنے آ گئے کہ ایک لڑکی اور لڑکا، اس کا تعلق پہلے تو ہم باہر کے دنیا کے یہ خواب دیکھتے تھے، ماڈرن ہونے کی دلیل تھی، لیکن آج ایک تو جہالت کی وجہ سے، جہاں بالکل تعلیم نہیں وہاں عورت اور مرد کا تعلق بگڑا، اور ایک وہ جہاں بہت ہی تعلیم ہے، اور ایک وہ جہاں لا دینیت ہے۔ یعنی ہم باہر کی دنیا میں ابھی رونے لگ گئے اس بات کو کہ ہومو سیکشولیٹی آ گئی، لیسبینزم آ گیا، عورتیں عورتوں میں انوالو ہو گئیں، مرد مردوں میں ہو گئے، لیکن اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ابھی ہم اس درجے پہ نہ بھی آئے ہوں، اور اللہ نہ کرے کبھی آئیں، لیکن ہم آئیں گے، کیونکہ جس تیزی سے ہم بڑھتے ہوئے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن لڑکی لڑکے کی دوستی اب یہاں بھی ایکسیپٹڈ ہو گئی، پہلے ایکسپیکٹڈ تھی، اب ایکسیپٹڈ ہو گئی۔ پہلے اس کو عزت کا چور کہتے تھے، اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کے گھر میں کوئی پتھر پھینک دے، کسی دیوار سے جھانک لے، تو سارے مردوں کی غیرت خون کی آنکھوں میں اترتا تھا، غیرت جاگتی تھی، اور اس لڑکے کو پکڑ کر بغیر کچھ وجہ سوچے سمجھے وہاں سے بھگا دیا جاتا تھا۔ آج لڑکے کی ماں نے بھی اور لڑکیوں کی ماں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا، بس ایک سے کرنا، اچھا جس سے کرو گے ہمیں بتا دینا۔ तो याद रखिए कि इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। आपको ये मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी और वेस्ट में रहने लगो तो अब समझ भी नहीं आएगी, वाई मामा व्हाट्स रॉन्ग, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड। मामा इसमें क्या बुरी बात है, मैं शादी तो करना चाहती हूँ। और ज़रा सी अच्छी बेटी होगी तो कहेगी मामा ही इज़ अ मुस्लिम गाय, मैं एक मुसलमान लड़के से प्यार करती हूँ, कोई गैर मुस्लिम से थोड़ी करती हूँ। और कल का दौर आएगा लोग ये तक कहेंगे मामा ही इज़ अ बॉय, मैं एक लड़के से दोस्ती कर रही हूँ, मैंने लड़की से तो नहीं की। अब मेरी स्टोन को आप खुद समझिए, जो नाखूब था वो खूब हुआ कि ग़ुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। अल्लाह के नबी सल्लम की बड़ी वाज़े बातें हैं, तो लिहाजा एलानिया बदकारियाँ नहीं होंगी और ख़ास तौर पर मंगेतर का रिश्ता आज हमारे यहाँ बेहयाई और बुराई का सिंबल बन गया। चले मंगनी के मौके पे अंगूठी पहनाना तो कई साल से मारूफ है, लेकिन शादी से पहले और मंगनी के बाद के दौर में एक दो साल खूब खातरें दावतें, लड़की उधर लड़का इधर, वो दावत वो उनके, फिर अकेले होटलिंग, फिर घूमने जाना, शादी की किसको ज़रूरत रह जाएगी। और आप क्या समझते हैं कि इतना आसान है? आप आग और पानी को इकट्ठा करें तो धुआं ना निकले। और ऐसे लोग जिनको लग रहा है कि अब हमारी शादी हो जाएगी, जब आप उनको साथ कर देते हैं तो क्या वो बैठकर वहाँ कुरान पढ़ेंगे? अल्लाह के नबी सल्लम की हदीस सुन लीजिए इस मौके पे, जो आज की हमारी आयत तदब्बुर में भी है, कि कहीं भी एक मर्द और एक औरत जब तन्हा होते हैं, और अगर मैं औरत और मर्द को लड़की और लड़का कह दूँ तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, क्या होता है? तिर्मिज़ी की रिवायत है 2165, इब्ने उमर इसके रावी हैं। तवील हदीस है जिसका आखिरी हिस्सा बीच का पढ़ने वाली हूँ। आपने फरमाया अला ला यखलु वन्ना रजुलुम, खूब खबरदार हो जाओ कोई मर्द तन्हा न हो एक औरत के साथ भी, इमरातिन इल्ला कान सालिसहुम शैतान, खबरदार जब भी कोई मर्द किसी औरत के साथ खलवत में होता है, अलोन होता है, तन्हाई में होता है, तो इनके साथ तीसरा शैतान होता है। और शैतान फिर क्या कहेगा ये आप और मैं खुद जानते हैं। तो लिहाजा मंगेतर के नाम पे, फियांसी के नाम पे, और इसको मॉडर्निज्म का सिंबल बनाकर लड़के लड़कियों को इतना ना आजमाइए, ये उनकी भी आजमाइश होती है। भूखे के सामने खाना रख दें और कहो खाना नहीं है, ये तो ज़्यादती की बात है। प्यासे के सामने पानी रख दें और फिर आप देखिए सारा दिन रोज़े से होते हैं, कुछ नहीं होगा। इफ्तारी के वक्त सामने खाना पानी आ जाए सब्र नहीं होता? जब चीज़ नहीं है तो इंसान सब्र कर लेता है, तो जज्बात को भड़काने वाली हर मुमकिन चीज़ मौजूद है। और वो भी नहीं रहा पहले तो ये पुरानी बातें लगती हैं, डेटिंग अप तो एक एक मिनट का चिट चैट होता है, पहले ही प्लान कर लिया जाता है शादी के बाद जाना किधर है, कितने बच्चे पैदा करने हैं, तुम किधर रहोगी, हमारा लाइफस्टाइल क्या होगा। मुझे बताइए क्या ये इस्लाम का नुक्ता नज़र है? आज बहुत सारी शादियों के नाकाम होने की वजह ये मुसीबतें हैं। मैं कम अज़ कम 5 ऐसे केसेस आपको बता सकती हूँ जो मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगी, सिर्फ इसलिए शादी नहीं हुई कि शादी से पहले ही लड़का लड़की इतने बेतकल्लुफ़ हुए, एक दूसरे के कई ऐप खुल गए। देखिए जब सर पड़ती है बंदा बर्दाश्त करता है, क्या आप में से कोई कह सकता है कि आप अपने शौहर के लिए आइडियल हैं? शादी हुई आपकी कमियों बेशियों के साथ, उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया, क्या आप में से मेरे में से कोई कह सकता है कि मेरे शौहर जो है वो गुलफाम शहजादे हैं, उनके पास दुनिया की हर खूबी है? नहीं है। लेकिन जब घर गए, कुछ अच्छी मिली कुछ बुरी मिली, चंद महीनों साल में कहा भाई यही नसीब में था, यही मिलना था, एक डेढ़ साल का कॉम्प्रोमाइज़ होता था, फिर आप कहते थे चलो, जैसे माँ बाप को नहीं बदल सकते, शौहर को भी नहीं बदलना, बीवी को नहीं बदलना, घर बस जाते थे। कई दफ़ा आपने खुद अपने बड़ों में सुना, अगर अम्मा जी जो बैठी हैं उनसे बैठ में बाद में सुनिएगा, कईयों की शादी तो ऐसे हुई है कि उनकी शादी वाले दिन को बताया गया तेरी शादी हो रही है कोई अम्मा ऐसी बैठी तो हाथ खड़ा कर दे। जी बिल्कुल, वो देख लीजिए बाद में अम्मा जी सुनाइएगा कहानियाँ। हमारे एक अंकल हैं तो वो कहानी सुनाते हैं, कहते हैं कि जब रिश्ता पक्का हुआ तो मेरी माँ कहीं कर आई तो मुझे कहने लगी कि तेरी शादी करने लगी हूँ, तो कहने लगे कि मैंने कहा अम्मा कौन है, कैसी है, क्या करती है, तो अब ज़रा माँ की टोन सुनिए, कहती है गूंगी है, बैरी है, अंधी है, लंगड़ी है, लूली है, करता है कि नहीं करता शादी? कहते मैं डर गया अम्मा से, मैंने कहा अम्मा कर दे। मैं आपको मिसाल दे रही हूँ, ये भी कोई एक्सट्रीम नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ बेतकल्लुफ़ी के नाम पर जब रिश्ते इतने खुल जाते हैं अब फिर शादी होती नहीं है। अक्सर लड़की लड़के के बारे में ये सवाल आने लगता है कि जी ये पहले तो बड़े खुश थे अब परेशान हैं, वजह क्या है कि वो बेतकल्लुफ़ हो गए। वो उस वक़्त मिलते हैं मंगेतर के सूरत में, वो फूल भी ले आएगा, वो राडों की घड़ी भी ले आएगी, वो कोई उसको फ़ोन भी दिला देगा, बड़ा अच्छा लगेगा। शादी के बाद तो ये चलन नहीं चलते, वहाँ तो आपको रोटी चाहिए, उधर तो गुलाब का फूल मिल जाता है, इधर आपको गोभी का फूल चाहिए कि रोटी पकानी है, खाना पकाना है, आटा लेकर आओ रोटी पकाएं। तो याद रखिए, ये ताल्लुक़ भी हमने आज बहुत गलत कर दिया। और चूंकि इस पे अब कोई बात नहीं करता, क्यों नहीं करता, इसलिए कि नोन है, तो नोन होगा तो नोन होगा, लेकिन अल्लाह ने साफ़ कह दिया कि जब निकाह हो उससे पहले पाक दामनी हो। और यकीन कीजिए, कई ऐसी कहानियाँ हैं, शादी के वक्त लड़कियाँ प्रेग्नेंट होती हैं, कई जगह अचानक शादी सिर्फ इसलिए होती है कि अब छुप नहीं रहा हमल, वो किसी और का बच्चा है या इसका है वो बच्चा हलाल का नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि इस रिश्ते को हम इज़्ज़त के साथ संभाले। मंगनी करनी नहीं चाहिए इतनी लंबी, आप निकाह करके उनको उनके घर का कीजिए, क्यों किसी को आजमाइश में डालें और दूसरी बातें। बहरहाल फिर फरमाए, पस जब ये लौंडियाँ निकाह में आ जाएं या फिर अगर वो बेहयाई का काम करें तो इन्हें आधी सज़ा है इस सज़ा से जो आज़ाद औरतों की है। कनीज़ों से निकाह का ये हुक्म तुम में से इन लोगों के लिए है जिन्हें गुनाह और तकलीफ़ का अंदेशा हो, और तुम्हारा जब्त करना बहुत बेहतर है। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और बड़ा रहमत वाला है। क्या पता चला, मुहसनात, मुहसना का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में जिन मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है उसमें एक आता है शादीशुदा औरत, यानी हर वो औरत जो किसी मर्द के निकाह में आ गई वो मुहसना है। हिसन कहते हैं किले को, हिस्नुल मुस्लिम एक बड़ी मारूफ किताब भी है ना दुआओं की, जो आप में से अक्सर को हम लोग रेकमेंड करते हैं। तो मुहसिना का लफ्ज़ जो है ये अरबी ज़ुबान में शादीशुदा औरत के लिए भी आता है, पाक दामन औरत के लिए भी आता है, आज़ाद औरतों के लिए और मुसलमान औरतों के लिए। और आप जमा करके देखिए, ये चारों चीज़ें जमा होती हैं तो एक शरीफ मुसलमान बाहया औरत तसव्वुर में आती है। अच्छी औरत कैसी होती है, नोट कर लीजिए, नेक सोच और अमल वाली, यानी अल्लाह के हाँ एक औरत, एक अच्छी लड़की, एक अच्छी बेटी की तो क्या खूबियाँ। फिर इसी तरह फ़ोहश से इज्तनाब करने वाली और खुफिया दोस्तियों से परहेज़ करने वाली। हमने इस रुकू से क्या सीखा, अब अच्छी बुरी बातें नोट करेंगे ताकि आप इस साल जब कुरान पूरा करें तो आपके पास एक पूरी लिस्ट तैयार हो चुकी हो कि हमने आयतों से क्या सीखा, क्योंकि इस जल्दी में हम एक एक आयत को ब्रीफ तो नहीं कर सकते। तो इस पूरे रुकू से हमने क्या सीखा, नंबर एक, हिसारे निकाह में महफूज होना है, यानी बिला वजह गैर शादीशुदा नहीं रहना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के अकेले रहने को पसंदीदा नहीं फरमाया, हत्ता कि वो जिनकी शादी हुई और टूट गई, या जिनकी शादी हुई और बेवगी या बीवी के फौतिदगी की सूरत बनी। हज़रत अली को आपने इस बात का एहसास दिलाया था कि तीन चीज़ों में जल्दी करो, और उसमें एक वो जिसका साथी मौजूद ना हो उसके दूसरे निकाह में, फिर दूसरी बात सब्र करना सीखा हमने, फिर तीसरी बात छुपी दोस्तियां नहीं करनी इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह से बुरी चीज़ों से भी बचना है, एक औरत ने अपना निकाह खुद नहीं करना, वली के बग़ैर निकाह नहीं करना कराना। और इसी तरह से हमने इस रुकू से ये भी सीख लिया कि बेहयाई चाहे कितनी खूबसूरत क्यों ना हो जाए, हमने उससे अपने आप को दूर रखना है।